पहले तो छक कर के ठाकुर जी ने दूध पिया और जब तृप्त तो हो गए अब पूतना के प्राणों को प्रभु खींचने लगे। ये पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी। पूतना के शब्दों में ही भागवत में सुनिए क्या कहा पूतना ने कि सामुंचमुंचालमिति प्रभासिनी निस्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवर्तनेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्वन्निगात्रा क्षिपति रुरोदः। पूतना ने भगवान को कहा अरे बालक छोड़ दे। ये दो बार पूतना ने भगवान को कहा है कि छोड़ दे छोड़ दे। मानो आज परीक्षित सुखदेव जी से प्रार्थना कर रहे हों कि गुरुदेव एक बार कह देती पूतना के लाला मुझे छोड़ दो, तीन बार कह देती, अरे चार बार कह देती, लेकिन ये दो बार ही क्यों पूतना ने कहा कि सामुंच मुंच। केवल दो बार ही पूतना ने क्यों भगवान से छोड़ने का आग्रह किया? बोले इसलिए दो बार आग्रह किया है पूतना ने कि मानो आज पूतना भगवान को ये निवेदन कर रही है कि प्रभु इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों से आप मुझे मुक्त कर दो। भगवान पूतना से पूछ रहे हैं कि देवी तो फिर तीसरा मेरा कौन सा लोक है जहां मैं तुझे भेजूं? तो पूतना मानो भगवान को इशारा कर रही है अंतिम क्षणों में कि आपका जो तीसरा जो लोक है जो धाम है वो है गोलोक धाम। इहलोक और परलोक, लेकिन परलोक में जाने के बाद तो फिर लौटना पड़ सकता है क्योंकि जब तक हमारे पुण्य हमारे साथ हैं तब तक हम स्वर्ग आदि लोकों का सुख भोगते हैं, यज्ञ का, दान का, शुभ कर्म का। और जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं भोग भोग करके उन स्वर्ग आदि लोकों में तो फिर ये जीव संसार में आ जाता है। जैसे आप किसी शहर में जाएं और होटल में ठहरें, अब जब तक पैसा है तो सारी सुख सुविधाएं होटल की आपको मिल जाएंगी, अच्छा कमरा मिलेगा, अच्छा बेड मिलेगा, अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा सेवा श्रुषा होगी। लेकिन जब पैसा खत्म हो जाए तो एक दिन भी आप वहां नहीं ठहर सकते। ऐसे ही स्वर्ग आदि लोक हैं, जब तक हमारे यज्ञ का, दान का, शुभ कर्म का फल हमारे साथ है तब तक हम इन लोकों के भोगों को भोगते हैं, लेकिन जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर ये जीव संसार में आ जाता है। तो पूतना ने भगवान को कहा कि प्रभु मुझे इस संसार में लौटना नहीं है, ये प्रार्थना की है पूतना ने और दो बार इशारा कर रही है प्रभु से कि इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों से आप मुझे मुक्त करके आपका जो तीसरा जो धाम है गोलोक धाम, जहां पर एक बार ये जीव जब चला जाता है तो आपके परिकर में ही सम्मिलित हो जाता है, फिर उसे इस जन्म मृत्यु रूपी संसार में लौटना नहीं पड़ता, ऐसा निवेदन पूतना ने भगवान को किया है। भगवान ने पूतना के स्तनपान किए और पूतना के स्तनपान करके भगवान ने पूतना के प्राणों को भी हरण कर लिया और पूतना को सदगति प्रदान कर दी। त्रिगव्योति, छह कोष के अंदर जाकर के पूतना का शरीर गिरा है। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर खेल रहे थे। ऊंची देह, ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाई थी भगवान को उतारने के लिए, और उन गोपियों के अंक में प्रभु को प्रदान किया जिन गोपियों के अंदर भगवान के प्रति बाल भाव था। ये गोपियां लाला को लेकर के जा रही हैं और बड़ा सुंदर भाव गुनगुना रही हैं। आइए, आज गोपियां ठाकुर जी के दर्शन करके अपनी भावना को व्यक्त कर रही हैं। गौशाला की ओर प्रस्थान करते हुए गोपियां ये गा रही हैं, गुनगुना रही हैं। हम भी ठाकुर के श्री चरणों में गोपियों के साथ थोड़ा गुनगुनाएं।
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा। ओ जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा। हो जय श्याम श्यामा श्याम। जय श्याम श्यामा जय श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। सुंदर कुंडल नयन विशाला कल सोहे वैजंती माला। ओ सुंदर कुंडल नयन विशाला कल सोहे वैजंती माला। सुंदर कुंडल नयन विशाला कल सोहे वैजंती माला। या छवि की बलिहारी राधे श्याम श्यामा कबहू मधुबन रास रचायो। कबहू लूट लूट दिखायो, कब हूँ मधुबन राशि रचायो, कब हूँ लूट लूट दिखायो, कब हूँ मधुबन राशि रचायो, कब हूँ लूट लूट दिखायो, कब हूँ मधुबन राशि रचायो। नाचत विपिन ब्रह्मत फिरत यदुराई, वाल वाल संग धेनु चरा, बन बन ब्रह्मत फिरत यदुराई, वाल वाल संग धेनु चराई, बन बन ब्रह्मत फिरत यदुराई, वाल वाल संग धेनु चराई, बन बन ब्रह्मत फिरत यदुराई। और का
जो खायो ब्रजबन तन ये नाम धरायो।
हरि बोल।
करके बालकृष्ण को गौशाला में गई और गोपियों ने रक्षा विधान किया प्रभु का और लाकर के मां की गोद में ठाकुर को दिया। मैया ने लाला को शयन कराया और पाले में प्रभु को सुलाया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब मथुरा से नंद आदि गोप लौटे तो मार्ग में पूतना का शरीर पड़ा हुआ है, जब नंद आदि गोपों ने पूतना के शरीर को देखा, बड़ा आश्चर्य प्रकट करते हुए बोले कि कौन है और इतनी भारी देह। तो ब्रजवासियों ने पूतना के अंग को काट काट करके पूतना का अग्नि संस्कार किया और पूतना की देह से सुगंध निकलने लगी। इतना सुगंध निकली पूतना के देह से कि सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि गुरुदेव, जब इस देह को जलाया जाता है तो इसमें से दुर्गंध निकलती है और आप कह रहे हो कि पूतना के देह से सुगंध निकल रही थी, ये पूतना है कौन? तो सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की लड़की थी। वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर जब तीन पग पृथ्वी मांगने के लिए गए थे तो राजा बलि की लड़की ने वामन जी का दर्शन कर उनके प्रति ये भाव रखा कि कितना सुंदर ये बालक है वामन, यदि ऐसा बालक मेरे होता तो मैं अपनी गोद में बिठा करके उसे दूध पिलाती। लेकिन भगवान ने कहा उतना उस रत्नमाला को कि देख रत्नमाला, इस अवतार में तेरी कामना को पूर्ण नहीं कर पाऊंगा, कृष्णावतार में मैं तेरे काम को इसको जरूर करूंगा। तो यही आकर के बनी है पूतना और भगवान ने पूतना के स्तनपान करते हुए पूतना को अधोगति प्रदान नहीं की, पूतना को प्रभु ने मां की गति प्रदान कर दी। तो कम्बा दयालुम शरणम ब्रजेम। परमात्मा श्री कृष्ण की बराबर कौन दयालु हो सकता है जो पूतना मारने के लिए प्रभु को आई थी और भगवान ने उस पूतना को मां की गति प्रदान कर दी। एक दिन भगवान 81 दिन के हुए, आज जन्म नक्षत्र भी था प्रभु का, तो मां ने विचार किया कि मैं ब्राह्मणों को अन्नदान वस्त्रदान गौदान कराऊंगी और भोजन भी ब्राह्मणों को कराऊंगी। ऐसा मन में संकल्प लेकर के मां लाला को दूध पिलाकर के पालने में सुलाया और पालने को लेकर के गौशाला में गई। एक टूटी बैलगाड़ी पड़ी थी उसके ऊपर भगवान के पालने को डाल दिया, ऊपर दूध दही माखन की मटकियां रखी थी और नीचे भगवान का पालना है। गहरी निद्रा में कृष्ण सोए हुए हैं, इधर मां सेवा में लग गई है ब्राह्मणों की। ब्राह्मण आए हैं और स्वस्ति वाचन का पाठ करने लगे। इधर कंस के द्वारा भेजा हुआ वो शक्टासुर नाम का असुर भी आया और आकर के उस बैलगाड़ी पर बैठ गया और जोर जोर से उसे हिलाने लगा भगवान की निद्रा भंग करने के लिए। प्रभु की नींद खुली और भगवान ने देखा तो शक्टासुर बैठा है। मन में प्रभु ने विचार किया कि मुझे मारने के लिए आया है, मैं थोड़ा सा रोऊं और मेरे रोने की आवाज जब मेरी मां सुनेगी और यहां पर मेरी मां जब आएगी तो मेरी मैया को देख करके झट ही भाग जाएगा। तो प्रभु ने रुदन करना शुरू किया। नंद भवन दूरी पर था गौशाला से, अब भगवान तो रो रहे हैं लेकिन मां ने लाला की रोने की आवाज नहीं सुनी। तो भगवान मन में बोले कि मैया तो हमारे रोने की आवाज नहीं सुनती, तो चलो या शक्टासुर से ही दो दो हाथ कर लो ना। तो नन्हे नन्हे अपने चरण प्रभु ने उठाए और उठाकर के जोर से एक शकट में लात मारी और झट शकट का प्रभु ने भंजन कर दिया। और दूसरे रूपाले में झूलते हुए बाल कृष्ण विराजमान हो गए। बोलो बाल कृष्ण लाल। जितने भी दूध दही माखन की मटकियां रखी थी सब नीचे गिरी धम धम से और फूट गई। ये कथा को थोड़ा समझते भी चलें, इन कथाओं के बड़े रहस्य भी हैं। दूध दही माखन की मटकियां ऊपर रखी थी और नीचे भगवान का पालना था। जैसी गलती ब्रजरानी यशोदा ने की ऐसी गलती हमको नहीं करनी है, क्योंकि मानव यही गलती करता है। हमारी दृष्टि में ईश्वर के लिए महत्व कम होता है और संसार के भौतिक पदार्थों को हम बहुत बहुत अधिक अधिक महत्व देते हैं। छोटी छोटी बातों में भी हमारी दृष्टि में धर्म के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए उतना महत्व नहीं होता जितना संसार के भौतिक पदार्थों के लिए हमारी दृष्टि में महत्व होता है। जहां भी भगवान की कोई बात आती है, धर्म की, ईश्वर की जब कोई बात आती है तो मन संकुचित तो हो जाता है। ये गृहस्थ रूपी गाड़ी है और गृहस्थ रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पति है और दूसरा पत्नी है, और जिस बैलगाड़ी को खींच रहे हैं यदि चाहे कि हमारी गृहस्थ रूपी गाड़ी ठीक प्रकार से चले, कोई रुकावट न आए, हमारे गृहस्थ जीवन में सुख शांति समृद्धि निरंतर बनी रहे, तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, प्रेम से कहिए श्री राधे। क्योंकि व्यक्ति को पुरुषार्थ का अभिमान हो जाता है, मैंने किया, मैं ये कर रहा हूं, ये मैं करूंगा, ये अपने पुरुषार्थ का बड़ा अभिमान इंसान को हो जाता है। बस वहीं से उसका पतन भी शुरू हो जाता है। कितना भी ऊंचाइयों पर व्यक्ति क्यों न पहुंच जाए अपने पुरुषार्थ से, लेकिन जब उसे अभिमान शुरू हो जाता है तो बस फिर नीचे ही आना होता है, फिर नीचे का ही नंबर है। कहने का अभिप्राय, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को पुरुषार्थ करते समय अभिमान न हो, हमारा अभिमान गले, इसके लिए व्यक्ति को श्रीमद् भागवत आदेश करती है कि पुरुषार्थ के साथ साथ निरंतर ठाकुर की प्रार्थना भी करते रहो, क्योंकि प्रार्थना से, स्तुति से, अभ्यर्चना से भगवान की हमारा अभिमान गलता है। अभिमान को यदि गलाना है तो भगवान की स्तुति करो, भगवान की प्रार्थना करो, भगवान की अभ्यर्चना करो, जिससे हमारा अभिमान गले। आज प्रभु ने इस लीला के माध्यम से ये ब्रज में रहस्य प्रकट किया कि कदारोह मारुणम लालयन्ति सुतम सती गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम न सेहे गिरकूटवत। इसी प्रकार से एक दिन अपने लाला को नंद भवन के आंगन में लेकर के ब्रजरानी यशोदा बैठी थी और दूध पिला रही हैं, भगवान मां की गोद में दूध पी रहे थे, मां अपने लाला का मुखारविंद निहार रही हैं, उनके सिर पर हाथ फेर रही हैं, बार बार अपने बालकृष्ण का कभी होठ चूमती हैं, कभी कपोल चूमती हैं, कभी मस्तक माँ चूमती है। इस प्रकार से ठाकुर को लाड़ दुलार प्यार माँ कर रही थी। भगवान माँ का दूध पीते पीते थोड़ी देर में जब आकाश की ओर ध्यान गया तो आकाश में तृणाव्रत नाम का असुर चक्कर लगा रहा है। ये तृणाव्रत आंधी के रूप में आया, वायु के रूप में आया। भगवान ने उस तृणाव्रत को जब देखा तो तृणाव्रत को देख करके प्रभु समझ गए कि ये मुझे मां की गोद से ले जाएगा और आकाश में। लेकिन भगवान विचार करने लगे, यदि मैं मां की गोद में लेटा रहा तो कहीं ऐसा न हो कि मां भी मेरे साथ उड़ करके आकाश में चली जाए। तो मैं अपने आप को संभालूंगा या अपनी मां को संभालूंगा। तो गरिमाणम शिशोर बोढ़ुम, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपने वजन को बढ़ाना शुरू कर दिया। इतने भगवान भारी हो गए। अब मां तो लाला को दूध पिला रही थी, अब मैया ने देखा कि दूध पीते पीते भगवान में वजन बढ़ने लगा। मैया बोली, मेरे लाला में दूध पीते पीते इतना वजन कहां से आ गयो? अरे मेरो लाला तो फूल से ज्यादा कोमल है, माखन से ज्यादा कोमल है, फूल से ज्यादा हल्को है, लेकिन इतनो वजन कहां से आ गयो? तो झट अपनी गोद से उठाकर के मां ने लाला को पृथ्वी पर बिठा दिया। उसी समय आंधी चली और चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। तुरंत अपनी गोद में तृणाव्रत ने भगवान को लिया और आकाश में ले उड़ा। भगवान तृणाव्रत के साथ युद्ध करने लगे। अंत में प्रभु ने युद्ध करते करते तृणाव्रत का अपने कर कमल से कंठ पकड़ा और जोर से प्रभु ने दबाया नन्हे नन्हे कोमल कोमल कर कमल से कि गोविंदाय नमो नमः। तृणाव्रत का उद्धार प्रभु ने किया। ये तृणाव्रत ये आंधी के रूप में आया था। ये कौन सी आंधी है भैया? व्यक्ति के जीवन में भी यह मोह रूपी आंधी चलती है। लेकिन प्रेम में और मोह में भी अंतर होता है। ठाकुर ये लीला जो ब्रज में कर रहे हैं ये मोह लीला नहीं है। भगवान अपनी आज ब्रज में प्रेम लीला कर रहे हैं। प्रेम में से आती है सुगंध और मोह में से आती है दुर्गंध, क्योंकि मोह में ठहराव होता है, मोह रुक जाता है, अटक जाता है, लेकिन प्रेम बहता हुआ होता है। जैसे वर्षा का पानी जब पृथ्वी पर गिरता है और बहता बहता यदि किसी गड्ढे में जाकर के रुक जाए तो आप देखना दो चार दिन में वहीं से फिर दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। आप वहां से निकलोगे जहां वर्षा का पानी रुका हुआ पड़ा है गड्ढे में, आप वहां से यदि निकलेंगे तो दुर्गंध आना शुरू हो जाएगी। और वही पानी जब नदी में जाकर के मिल जाता है तो स्वच्छ हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, पीने योग्य हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय कि प्रेम बहता हुआ होता है। प्रेम व्यक्ति के प्रति नहीं होता, प्रेम तो सबके लिए होता है। और मोह वस्तु के प्रति होता है, मोह व्यक्ति के प्रति होता है, मोह पदार्थ के प्रति होता है। तो मोह में से आती है दुर्गंध, लेकिन प्रेम में आती है सुगंध। मानो प्रभु ने अपनी लीला के माध्यम से उस मोह रूपी आंधी को हटाया, शांत किया और ब्रजवासियों के अंदर अपने उस प्रेम को जागृत कृष्ण कर रहे हैं। कि गर्ग पुरोहितो राजन यदूनां सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। एक दिन वसुदेव जी की प्रार्थना पर गोकुल में गर्गाचार्य जी महाराज पधारे और नंद बाबा ने इनका बहुत स्वागत किया। नंद बाबा इनको बोले कि गुरुदेव, आज आप हमारे भाग्यों से इस गोकुल में आए हो, आपने बहुत हमारे ऊपर कृपा की, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है। नंद बाबा, क्या प्रार्थना है? बोले, प्रार्थना ये है कि मेरे दो लाला हैं, उनके अभी तक नामकरण नहीं हुए हैं, तो आप मेरे लालाओं का नामकरण कर दीजिए। तो नंद बाबा से गर्गाचार्य जी ने कहा कि देखो ब्रजराज, मैं आपके लालाओं का नामकरण नहीं करूंगा। क्यों? क्या आपकी सेवा में हमसे कोई गलती हो गई? नंद बाबा, गलती नहीं हुई है। मैं यदि आपके लालाओं का नामकरण करूंगा और ये बात यदि कंस को मालूम चल गई मथुरा में, तो कंस मुझे दंडित करेगा। आप ऐसा करिए कि आपके जो कुल पुरोहित हैं, जिनका नाम है सांडिल्य मुनि, आप उनसे अपने लालाओं का नामकरण करा लीजिए। तो नंद बाबा गर्गाचार्य जी से बोले कि महाराज, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, महान ज्योतिषी हैं, परम ज्ञानी हैं, हमारी इच्छा तो आपसे कराने की है। देखो गुरुदेव, आप मन में इस बात पर विचार कर रहे होंगे कि हम सब जात बिरादरी को बुलाएंगे, सारे गांवों में हम ये घोषणा करेंगे कि आज नंद के यहाँ पर नामकरण का उत्सव है, तो हम कोई उत्सव ही नहीं मनाएंगे। हम किसी भी जात बिरादरी को निमंत्रण नहीं देंगे। आप एकांत में चलिए गौशाला में और दोनों लालाओं का नामकरण कर दीजिए। ये बात जब नंद बाबा की गुरुदेव ने सुनी तो प्रसन्न हो गए और लेकर के गर्गाचार्य जी को गए गौशाला में। ऊंचा सिंहासन बिछा करके गुरुदेव को बिठाया और अर्घपाद्य से पूजन हुआ। दोनों माताओं को अंदर खबर करा दी कि आज गर्गाचार्य जी आए हैं और दोनों माताएं अपने अपने लालों को लेकर के आमे। अब रोहिणी और यशोदा, ये दोनों ही अपने अपने लालों को लेकर के आ रही हैं, लेकिन मार्ग में रोहिणी जी से यशोदा ने कहा कि बहन, आपको मालूम है हमारे गुरुदेव त्रिकालज्ञ हैं, ये तीनों कालों की बातें जानते हैं, तो आज इनकी हम परीक्षा ले लें। रोहिणी बोली, यशोदा, तेरे मन में क्या क्या बातें उठती रहती हैं? अरे, इतने बड़े विद्वान की हम कैसे परीक्षा कर सकती हैं? हम तो गांव की गमार, पढ़ी लिखी नहीं, ऐसी गमालिन ग्वारिन हम स्त्रियां हैं, हम इतने बड़े विद्वान की कैसे परीक्षा कर सकती हैं? तो यशोदा जी ने कहा कि रोहिणी बहन, बस इतना ही तो करना है कि मेरे लाला को तुम ले लो और अपने लाला को मोह दे दो। आज हम गुरु जी से पूछेंगे कि कौन सा लाला कौन का है। अब लालाओं की अदला बदली करके गौशाला के अंदर जा रही हैं। दूर से आते हुए जब नंद बाबा ने देखा तो मन में नंद बाबा बोले, अरे आज कितना पवित्र दिन है, अपने अपने लालाओं को लेकर के इन माताओं को आना चाहिए, लेकिन ये तो एक दूसरे के लाला को लेकर के आ रही हैं, कहीं भूल से तो ऐसा नहीं कर रही? पर नंद बाबा के मन में भी यही बात आई कि चलो कोई बात नहीं, यदि भूल से भी एक दूसरे के लाला को उठा करके चली आई है तो कोई बात नहीं, आज मैं भी गुरुजी से पूछूंगा कि कौन सा लाला कौन का है। तो नंद बाबा के मन में इधर यही भाव आया, अब एक दूसरे के लाल को लेकर के बैठी हैं, सबसे पहले गर्गाचार्य जी ने गणेश जी महाराज का आह्वान किया कि गणानाम त्वा गणपति गुंग हवामहे, प्रियाणाम त्वा प्रियपति गुंग हवामहे, निधीनाम त्वा निधिपति गुंग हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्वध्वमा त्वमजासि गर्वधम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। गणेश जी महाराज का आह्वान हुआ, सर्व देवताओं का पूजन किया और पूजन होने के बाद फिर नंद बाबा की ओर देख करके गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज अब आप आज्ञा करिए मैं किस लाला का नामकरण करूं। गुरुदेव, ये जो यशोदा की गोद में लाला बैठा है ना, पहले आप इसका नाम रखिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज के मुख से भाव निकला कि अयम हिरोहणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणै आक्षास्तते रामिति बलाधिक्यात बलम विदुः। नंद, ये बैठा तो यशोदा की गोद में है लेकिन यशोदा का लाला नहीं है। अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी को लाला है और यहां के अंदर शक्ति बहुत होगी, ताकत बहुत होगी, बल बहुत होगा, तो आज हमने आपके लाला का नाम रखा है बल। और दूसरा इनका एक नाम होगा राम, जो एक बार आपके लाला का दर्शन कर लेगा, क्योंकि सबको ये आनंदित करने वाला होगा, तो एक नाम बल और दूसरा नाम इनका राम और तीसरा एक नाम और रोहिणी, क्योंकि रोहिणी का भी पुत्र ये है, और चौथा बलराम जी का एक नाम है संकर्षण। कल आप लोगों ने कथा को सुना था, ध्यान दिया या नहीं दिया, लेकिन मैं आपका ध्यान थोड़ा आकर्षित करा दूं। कल मैंने कथा में कहा था कि भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी थी कि देवकी के साथ में गर्भ का आकर्षण करो और रोहिणी जी के गर्भ में डाल दो, ये योग माया को आज्ञा दी थी। तो गर्भ का आकर्षण होने पर ये बलराम जी महाराज ही थे, सातवां गर्भ। तो गर्भ का आकर्षण होने पर इनका एक नाम पड़ा है संकर्षण। गुरुदेव, आपने तो मेरे लाला के बहुत सुंदर नाम रखे, लेकिन अब इस लाला का भी नाम रख दो ना। देखो नंद बाबा, आपका ये जो लाला है मैं बहुत देर से देख रहा हूं, एक मिनट भी चैन से नहीं बैठ रहा है, कितना उछल कूद, कितनी आंखें चला रहा है, कभी इधर कभी उधर, अति चंचल है, इसका भी नाम रखूं? बोले हां गुरुजी, इसका भी नामकरण कर दीजिए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ब्रजराज, शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। आपका ये जो लाला है इसके युग युग में अवतार हुए, कभी शुक्ल अवतार, कभी रक्त अवतार, कभी पीत अवतार, कभी कृष्ण अवतार, और आज हमने आपके लाला का नाम रखा है कृष्ण। कृष्ण कहते हैं जो अपनी ओर खींचे, कर्षति इति कृष्ण। नंद बाबा, जो एक बार आपके लाला का दर्शन कर लेगा वो तो खिंचा ही चला आएगा, इतना आकर्षण आपके लाल में होगा, इसलिए आज हमने इनका नाम रखा है कृष्ण। इतना कहने के बाद भी संतोष नहीं हुआ गर्गाचार्य जी को, तो गर्गाचार्य जी बोले कि देखो नंद बाबा, एक बात और मैं रहस्य की बताऊं, बोले गुरु जी कहिए, ये जो आपका लाला है ना, ये तो साक्षात नारायण है, ये नारायण है। इतना जब सुना, अब तक तो भगवान भी चुपचाप बैठे थे मां की गोद में, जब गुरुदेव ने कहा कि ये नारायण है, तो भगवान अपने गुरुजी की ओर लाल लाल आंखें निकालने लगे। जो गुरुजी ने ठाकुर जी की लाल लाल आंखें देखी तो इशारे से पूछा, क्यों प्रभु, क्या आप नारायण नहीं हैं? क्या मैंने मिथ्या कहा, मैंने झूठ बोला? बोले गुरुदेव, मैं जानता हूं कि मैं नारायण हूं, लेकिन आप मत कहना। यदि आप ये पक्की मोहर लगा दोगे कि मैं नारायण हूं तो गजब हो जाएगा। बोले क्या होगा? बोले गुरुजी, यदि आपने मुझे नारायण कह दिया तो मेरे मैया और मेरे बाबा मेरे लिए एक छोटा सा मंदिर बनवाएंगे, क्योंकि नारायण का तो मंदिर होता है ना, और उस मंदिर में मूर्ति की जगह मुझे पधरा देंगे और सूखे सकल पारे भोग लगाएंगे, और जो मीठी लीला करने को इस ब्रज में मैं आया हूं, माखन चोरी, वो सब धरी की धरी रह जाएगी। आप मना कर दो कि मैं नारायण नहीं हूं। तो गर्गाचार्य जी महाराज बोले कि प्रभु, आप इतना नाराज क्यों होते हो? अरे ब्राह्मणों को बात पलटने में कितना देर लगती है, अभी पलट देता हूं। अब नंद बाबा तो इस चिंता में डूबे हैं कि गुरुदेव ने मेरे लाल को नारायण कह दिया, अब हमारो लाला तो भगवान है, हमारो लाला तो नारायण है, इस सोच में डूबे हैं नंद बाबा। तत्क्षण गुरुदेव ने कहा कि ब्रजराज, आपके लाला नारायण नहीं है। हां गुरुजी, मैं भी सोच रहा था कि मेरा लाला नारायण कैसे हो सकता है, शायद मेरे लाला में कुछ अच्छे गुण आ गए होंगे तो आपने नारायण कह दिया होगा। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नारायण समो गुणै, आपके लाला में कुछ नारायण के से गुण आ गए हैं, नारायण समो गुणै। यहां पर प्रभु ने ये बात छिपा दी। तो आज भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, कितना सुंदर नाम रखा, कृष्ण और बलराम। ये कितना पवित्र नाम प्रभु का है, कृष्ण नाम ये गुरुदेव ने दिया। आइए हम उन गोकुलपति के श्री चरणों में प्रणाम करें, बड़े भाव से निष्ठा से उन श्याम के चरणों में प्रणाम करें। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ठाकुर को हम प्रणाम करें।
कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री बारंबार प्रणाम। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
यशोदा जिन
नंद जो बपैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है,
यशोदा
जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है, यशोदा जिनकी मैया है, नंद जो बपैया है,
ऐसे श्री गोपाल को
जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को रहो बारंबार प्रेम से कहिए श्री राम है।
ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम,
संग धेनु चरावे,
लूट लूट दही माखन खावे, ग्वालन के संग धेनु चरावे,
लूट लूट दही माखन खावे, ग्वालन के संग धेनु चरावे,
ऐसे लीला धाम को,
ऐसे लीला धाम को,
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है,
ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है,
ऐसे लीला धाम को
बारंबार प्रणाम, जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है,
ऐसे श्री भगवान को
बारंबार प्रणाम।
द्रुपद सुता की लाज बचाओ,
ब्रह्मसी गज को मर्द छुड़ायो,
द्रुपद सुता की लाज बचायो,
ब्रह्मसी गज को मर्द छुड़ायो,
द्रुपद सुता की लाज बचायो,
ब्रह्मसी गज को मर्द छुड़ायो,
द्रुपद सुता की लाज बचायो,
ग्रहसी गज को मर्द छुड़ायो,
ऐसे कृपा धाम को,
ऐसे कृपा धाम को,
ऐसे
कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को
बारंबार प्रणाम है, बारंबार ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है।
दोनों हाथ उठा करके प्रेम से ताली से बजा करके
We'll be right back.
से श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
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 ऐसे
प्रभु का नामकरण हुआ कृष्ण और बलराम। गुरुदेव को दक्षिणा देकर के विदा किया। दोनों माताएं अपने अपने लाल को लेकर के जब अंदर जाने लगी तो रोहिणी जी से यशोदा ने पूछा, बहन तुम्हें याद है कि हमारे गर्गाचार्य जी महाराज लालाओं का क्या नाम रख गए? तो रोहिणी जी ने कहा, यशोदा सच कहती हूं, मैं तो भूल गई। बोले, मैं भी तो अपने लाला को नाम भूल गई। गुरु जी कुछ 150 नाम रख गए, अब न जाने कब गुरुदेव आएंगे, कब हमसे मिलेंगे। लेकिन अब हमारे लालाओं का नामकरण तो हो ही चुका है, फिर कभी गुरुजी आएंगे तो उनसे हम अपने लालाओं का नाम तो पूछ ही लेंगी। जब तक नहीं आते हैं गुरुदेव, तब तक अपने लालाओं को कुछ नाम लेकर के हमें पुकारना तो है ना। तो रोहिणी जी ने कहा, यशोदा देख बहना, मैंने तो अपने लाला को नाम बलुआ धर लियो है। आपने बलुआ धरो तो फिर मैंने भी अपने लाला को नाम कनुआ धर लियो है। ये ठाकुर जी के प्यार के नाम है कनुआ और बलुआ।